परम ब्रह्म से बात हुई थी, वो आएंगे ऐसा बोला था
सेठ,
परम ब्रह्म वो आएंगे, पूछो ना उनको चलेगा।
ओम अज्ञान जीवनांध श्रीज्ञानांजन शुभाग्रह चक्षुरोन्मितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपकदां ददाति सुदान्तरं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द सद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा
से
कौन सा गुजराती देखो ऊपर होगा इधर भी होगा नीचे सभी। We are after 2 months.
Almost 2 months.
2 months.
Last date
20th
of October.
Okay.
20th
October.
20th
October.
20th October. Okay. So, उसके बीच में अब भक्तों को बहुत सारी सेवाएं और उत्सव थे। कार्तिक महीने में दिवाली वगैरह और उसके बाद फिर आपके गेस्ट आए थे बहुत सारे, इसकॉन ब्यूरो मीटिंग्स थी 1 week एंड दैट वॉज फॉलोड बाय भगवद गीता बुक मैराथन स्टार्टेड। सो सो आप सब भक्तों का मैराथन का सेवा डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमने इस महीने के लिए मंगलवार रखा है, जस्ट वंस इन अ वीक, बिकॉज आफ्टर मैराथन वी कैन अगेन स्टार्ट संडेस। मंगलवार सबको कंफर्टेबल है? सबको कंफर्टेबल है? जस्ट फॉर एक दो दो तीन वीक दिसंबर जब तक है तब तक मैराथन तक, बस फिर संडे ज्यादा कंफर्टेबल है आई नो बट स्टिल। अगर एक भी डिवोटी को कंफर्टेबल ना हो तो सोच सकते हैं उसके ऊपर। हाँ, अगर कोई भी एक भी डिवोटी ऐसा है कि जिसको कंफर्टेबल ना हो तो हम सोच सकते हैं उसके ऊपर।
मेरे को अभी मंडे का छुट्टी रहता
है। अच्छा, लेकिन अगर किसी मंगलवार को अगर समस्या हो तो देन यू कैन कोऑर्डिनेट विद प्रेम विलास प्रभु। अगर समस्या हो मंगलवार को तो
मंगलवार
को दो तीन वीक, मतलब एक 2 week कर देते उसके बाद फिर बैक टू संडे। 16वां अध्याय हमने कंप्लीट किया था या 17वां कंप्लीट किया था?
16
16वां चैप्टर जिसमें भगवान ने शास्त्र को फॉलो करने वाले और शास्त्र को फॉलो नहीं करने वाले दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया है, देवी और आसुरी। तो पहले तो भगवान ने सबसे पहले देवी लोगों का वर्णन किया था कि देवी प्रकृति के लोग कैसे होते हैं, उसको संक्षेप में ही बताया, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि कुछ लोगों में सब लक्षण बताए हैं, लेकिन आसुरी प्रकृति के जो लोग हैं उनके विषय में भगवान ने थोड़ा विस्तार से बताया। तो ये स्वाभाविक है कि आसुरी प्रकृति के लोगों की संख्या देवी प्रकृति से ज्यादा होनी चाहिए, स्वाभाविक है, तभी तो भगवान उसको डिटेल में बताया, नहीं तो अगर अधिकतर देवी लोग होते तो फिर भगवान देवी गुणों के विषय में अधिक बताते, स्वाभाविक है। इसका मूल कारण यह है क्योंकि कृष्ण को भूल करके जो लोग यहां संसार में गिरे हैं वो लोग प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित है, और प्रकृति के तीन गुणों से प्रभाव में आने के कारण अधिकतर लोग या तो रजोगुण तमोगुण में स्थित होते या फिर उससे भी नीचे चले जाते। जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन् तामसा, जो सबसे निम्न कोटि के कार्य करने वाले लोग हैं उनके विषय में भगवान कहते हैं कि वो सबसे निम्न कोटि की योनियों में जाते हैं। और यहाँ तक कि भगवान ये भी कहते हैं कि यासुरी जो लोग होते हैं वो मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, आसुरी में योनि वापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ये असुर लोग होते हैं उन लोग को भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनकी शरण में, उनको जन्म जन्म तक नरक में पड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि उनका अगर आप वर्णन जब सुनोगे, अगर आप आजकल कलयुग के जो लोग हैं उन लोग के चरित्र उनका लक्षणों सब आप देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत जो बची हुई दया होगी वो भी चली जाएगी आपके हृदय, इतने निम्न कोटि के असुर है। यद्यपि भगवान अपने खुद की ईर्ष्या करने वालों का भगवान काउंट नहीं करते, अगर समझ लो भगवान कोई भगवान की ईर्ष्या करता है तो भगवान उसको बहुत ज्यादा गंभीर रूप से नहीं लेते, और कोई भगवान को निंदा करता है गालियां देता है उसको भी भगवान गंभीर नहीं लेते, ये भगवान का स्वभाव है। लेकिन अगर कोई उनके भक्त को कष्ट देता है, उनके भक्त को परेशान करता है, फिर भगवान उसमें जीरो टॉलरेंस यूज करते हैं। जीरो टॉलरेंस मीन्स 1% भी सहन नहीं करेंगे वो। फोन बज रहा है। सो असुरी और देवी के विषय में भगवान ने अंत में 16वें अध्याय में ऐसा बताया कि जो लोग शास्त्र को फॉलो करते हैं वो लोग देवी देवी प्रकृति के माने जाते हैं, और जो लोग शास्त्र को फॉलो नहीं करते वो लोग असुरी प्रकृति के लोग हैं, शास्त्र को फॉलो नहीं करने वाले। और जो शास्त्र को फॉलो नहीं करते उन लोग को कोई सफलता प्राप्त नहीं होती, उनको कोई सिद्धि, उनको कोई सुख, उनको शांति, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर भी वो मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े आगे बढ़े हुए हैं, हम संसार को हम ही चला रहे हैं इत्यादि। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विद द डिमोनिक पीपल। तो फिर भगवान ने कहा, नहीं फिर अर्जुन सोचने लगे कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शास्त्र को फॉलो करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शास्त्र को फॉलो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन लोग को शास्त्र का में श्रद्धा है, जो शास्त्र को फॉलो नहीं करते लेकिन अपनी खुद की कुछ श्रद्धा है, जो शास्त्र को फॉलो नहीं करते लेकिन किसी के प्रति श्रद्धा है, तो ऐसे व्यक्ति कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अब सर प्रश्न कैसा है, अर्जुन ऐसा सोच रहे है कि क्या करे कि शास्त्र को फॉलो करने वाला और शास्त्र को फॉलो नहीं करने वाला उसके बीच का कोई है, उसके विषय में भगवान से जानना चाहते। लेकिन पहले हम उसके विषय में चैप्टर 17 का जो विभाग है, 6 विभाग है, उसकी हम चर्चा करते हैं। 17वां अध्याय जो है उसकी शुरुआत अर्जुन के द्वारा प्रश्न से होती है। इसके पहले 7 श्लोक जो है एक से सात, वो उसका शीर्षक ऐसा है कि उसका सब्जेक्ट मनुष्य की श्रद्धा और उसकी पूजा गुणों के द्वारा तय होती है, गुणों के द्वारा निश्चित होती है. The most determine one's faith and one's worship. Puja. Guno ke dwara nishchit hoti hai. Kaun nishchit karta hai? Phir Bhagwan तीन गुणों के आधार से कई चीजों का डिवीजन बताते हैं. आठ नौ दस आहार, मीन्स गुणों में आहार, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, अलग अलग प्रकार के आहार. फिर उसके बाद तीन श्लोक, ग्यारह बारह तेरह, यज्ञ. फिर छह श्लोक, चौदह से उन्नीस, तपस्या. फिर तीन श्लोक, बीस से बाईस, दान. और अंत में छह श्लोक, कंक्लूजन. What is the conclusion?
निष्कर्ष.
ओम तत्सत. वो उस भगवान उसमें ओम तत्सत का बताते हैं डिटेल. ओम तत्सत तो बड़ा आसान है ये चैप्टर तो. वेरी सिंपल. आहार है, फिर यज्ञ है, तप है, दान है, दैट्स इट. और उसके पहले श्रद्धा और पूजा, इसके विषय में भगवान बताते हैं. सो वी कैन स्टार्ट विथ टेक्स्ट नंबर वन. पढ़िए टेक्स्ट नंबर वन.
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी?
हाँ. तो यहाँ पर अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो लोग शास्त्र के सिद्धांत को फॉलो नहीं करते किंतु उनमें किसी प्रकार की श्रद्धा है, राइट? व्हाट इज द सेकंड लाइन?
अपनी कल्पना के अनुसार
किसी के प्रति श्रद्धा है उनकी. बहुत सारे होते हैं ना ऐसे, आज संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको शास्त्र से उनको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है शास्त्र की विधियां, उसके विषय में बहुत अनजान है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हैं.
पहले ऐसे ही थे,
है ना? किसी को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं. जैसे मैं भी एक बार राजस्थान से जा रहा था तो वहां पर बहुत सारे लोग, पता नहीं, मैं जब भी जाता हूँ कोई ना कोई तो मिल ही जाता है. मैं एक बार सितंबर में गया था, अगस्त में गया था, नवंबर में, अक्टूबर में, कभी भी जाता हूँ राजस्थान से जब भी गुजरता हूँ तो हाईवेज पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है. कोई प्रोसेशन जा रहा है या फिर कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ विशेष कलर के कपड़े पहने होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के. तो कई बार मैं पूछता हूँ कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कौन सी जगह जा रहे हैं, कौन से, ये अलग अलग प्रकार के. हर बार तो कैसे हो सकता है, हर महीने तो इतने बड़े इतने इनकी संख्या में लोग थोड़ी जाएंगे हर महीने, लेकिन अलग अलग लोग. तो जब पता पड़ा जानने से कि अलग अलग फॉलोअर से अलग अलग प्रकार की श्रद्धा वाले, जो किसी कोई माता के मंदिर में जा रहे हैं या फिर कोई किसी को मन्नत लगा हुआ है वहां जा रहे हैं, या फिर और जाते कितनी संख्या में, हजारों की संख्या में जाते पैदल जाते हैं. तो ऐसे तो ये राजस्थान की बात है, ऐसे गुजरात में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कोई ना कोई पता नहीं आप बीच में जा पैदल चल के जा रहा है कोई, आपको पहनने का कपड़े से तो अच्छा आदमी दिख रहा है लेकिन चल के जा रहा है।
हर संडे को कई लोग माता जी के मंदिर
चल के जाते हैं, जनरली हाईवे पे ऐसे देखा जाता है। तो ये तो एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में कि जो किसी अपनी कल्पना के अनुसार किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और उस प्रकार के जो लोग हैं उसके विषय में कृष्ण आप क्या कहेंगे, रजोगुणी है, सत्वगुणी है, तमोगुणी है, कौन सा। सो अगर आपने जब 15वें अध्याय में जो बनियन ट्री का बात बताया था उसमें ये लोग कहां पर है, उन लोग का स्थान, इस प्रकार के लोग उस बनियन ट्री में कहां पर आते हैं, रजोगुण तमोगुण कहां पर आते हैं। सो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं in the fourth chapter, 39th verse, it is said that a person faithful to a particular type of worship gradually becomes elevated to the stage of knowledge and attains the highest perfectional stage of peace and prosperity. In the 16th chapter, it is concluded that one who does not follow the principle laid down in scripture is called an asura, demon. And one who follows the scriptural injunction faithfully is called Deva or demigod. Now, if one with faith follows some rules which are not mentioned in the scriptural injunction, what is his position? This doubt of Arjuna's is to be cleared by Krishna. Are those who create some sort of god by selecting a human being or placing their faith in him, worshipping in goodness, passion or ignorance? Do such persons attain the perfectional stage of life? Is it possible for them to be situated in real knowledge and elevate themselves to the highest perfectional stage? Do those who do not follow the rules and regulations of the scriptures, but who have faith in something and worship gods and demigods and men, attain success in their effort? Arjuna is putting such questions to Krishna. लास्ट में जो क्वेश्चंस बताया है आप इसको हिंदी में एक बार पढ़िए, लास्ट में जो क्वेश्चंस प्रभुपाद जी ने बताए,
वेरी लास्ट
तीन चार क्वेश्चन होगा शायद।
क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमो गुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्धावस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछता है।
अगर इस प्रकार एक्चुअली प्रश्न तो सब चारों के एक ही है, चारों प्रश्न अलग अलग बताए हैं, उसके परिणाम बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन अंत वाला जो प्रश्न है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे लोग जो है वो लोग अपने प्रयास में सफल हो सकते हैं क्या, उनका वो कभी किसी कृपा से कि किसी माध्यम से किसी तरह से भी उन लोग को सफलता मिल सकती है कि नहीं, ये अर्जुन पूछना चाहता है। कहीं पर भी है क्या वो तमोगुण से आगे रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, कहीं पर भी है कि नहीं ऐसे? अगर कहीं पर है तो शायद ऊपर आ सकते हैं, अगर कहीं पर भी नहीं है तो क्या हो सकता है उनका, उनके विषय में कुछ बताइए कृष्ण। सो एक्चुअली ये लोग देवता मानेंगे, देवता भी नहीं बताए माने जा सकते या फिर असुर भी नहीं माने जा सकते, तो फिर ऐसे लोग को क्या मानना चाहिए? तो अब भगवान श्री भगवान वाच पढ़िए।
पुरुषोत्तम परमेश्वरे कहू देहधारी जीव द्वारा प्राप्त करायेला प्रकृति ना गुणों प्रमाणे तेनी श्रद्धा त्रण प्रकार नी होई सके छे, सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। हवे आ विषय मारी पासे थी सांभळ।
हाँ, तो तीन और चार भी पढ़ लीजिए।
હે ભરત પુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. સત્વગુણી મનુષ્ય દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે, અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે.
તો હવે ભગવાન યહાં પર સ્પષ્ટ રૂપ સે બતાતે હૈ હમ જસ્ટ ઓપન ભગવદ ગીતા હરેક વ્યક્તિ દૂસરે મેં તો ભગવાન ને કહા થા કે દેહધારી જીવ અર્જિત ગુણો કે અનુસાર, અર્જિત ગુણો કે અનુસાર, અર્જિત ગુણો કે અનુસાર કા ક્યા અર્થ હોતા હૈ કે હરેક વ્યક્તિ જબ જન્મ લેતા હૈ તો કિસી ના કિસી શરીર કા સ્વભાવ કે સાથ જન્મ લેતા હૈ. યહાં પર લિખા હૈ ત્રિવિધા ભવતિ શુદ્ધા દેહી નામ સા સ્વભાવજા. સ્વભાવજા, સ્વભાવજ કા અર્થ હોતા હૈ ઉસકે શબ્દાર્થ લિખા હૈ સ્વભાવજ. વોટ ઇઝ સ્વભાવજ? પ્રકૃતિ કે ગુણો કે અનુસાર. તો વ્યક્તિ અપને અપને પૂર્વ કર્મો કે અનુસાર એક વિશેષ પ્રકાર કા સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરતા હૈ, સ્પેસિફિક નેચર. ઉસી પ્રકાર સે કુછ લોગ એસે હોતે હૈ ના, જૈસે ઉસકા જન્મ હી હુઆ હૈ તમોગુણ મેં, તો વો ક્યા આલસી હો રહા હૈ, પડા રહેતા હૈ, ઉસકો ગંદી ચીજે પસંદ હોતી હૈ, કચરે કે પાસ ઉસકો રહેના પસંદ હૈ, અનક્લીન હેબિટ્સ હોતે, બચપન સે અનક્લીન રહેતા હૈ ઉસકો નેચરલ. કુછ લોગ હોતે સત્વગુણી, તો ઉનકો સ્વાભાવિક રૂપ સે વો જલ્દી ઉઠના પસંદ કરતે હૈ, સ્વાભાવિક સ્વચ્છ જગાઓ પર ઉનકા પસંદ આતા હૈ, નોર્મલ હૈ યે. તો ઇસ પ્રકાર સે હરેક વ્યક્તિ અપને અપને સ્વભાવ કે અનુસાર પ્રભુપાદ તાત્પર્ય મેં કહેતે, અપને સત્વગુણી રજોગુણી તમોગુણી પૂર્વ કર્મ કે અનુસાર એક વિશેષ પ્રભાવ વિભિન્ન ગુણો કે સાથ જીવ કી સંગતિ શાશ્વત ચલતી હૈ. ઉસકે વિષય મેં હમને સુના થા કે ભૂંગતે પ્રકૃતિ જાન ગુણા કારણમ ગુણો સંગોસ્ય ભૂંગતે સદસ જોની જન્મસુ એન્ડ ભૂંગતે પ્રકૃતિ જાન ગુણા એન્ડ દેર ઇઝ અનધર શ્લોક. સો કર્મણા દૈવ નેત્રેણા. બટ એનીવે પોઈન્ટ ઇઝ કે પ્રકૃતિ કે તીન ગુણો કે અનુસાર મનુષ્ય જૈસે કઠપુતળી કે તરહ કાર્ય કરતા હૈ. ચૂંકિ જીવ પ્રકૃતિ કે સંસર્ગ મેં રહેતા હૈ, અતએવ પ્રકૃતિ કે અનુસાર હી ગુણો કે અનુસાર વિભિન્ન પ્રકાર કે મનોવૃત્તિયા અર્જિત કરતા હૈ. લેકિન યદિ કોઈ પ્રામાણિક ગુરુ કી સંગતિ કરતા હૈ ઓર ઉસકે સાથ ઉસકે તથા શાસ્ત્ર કે વિધિ વિધાનો કા પાલન કરતા હૈ, તબ ઉસકી મનોવૃત્તિ બદલ સકતી હૈ. તબ ઉસકી મનોવૃત્તિ બદલ સકતી હૈ. इसलिए अगर कोई भक्त भी अगर ये चाहे, अगर ये कहे कि मैं अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता हूं, तो यहां पर प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनोवृत्ति बदल सकती है. ऐसा नहीं है कि मनोवृत्ति हमेशा वही रहेगी, मनोवृत्ति का परिवर्तन हो सकता है, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते. प्रभुपाद यस,
मतलब ये दोनों तरीके से मनोवृत्ति पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से बदल सकती है.
बदल सकती है અગર વો વ્યક્તિ શાસ્ત્ર કા યા આધ્યાત્મિક ગુરુ કા સંગ કરના શરૂ કરેગા, તો હો સકતા હૈ કે ઉસકા મનોવૃત્તિ બદલ સકતા હૈ. અર્થાત કિસી વ્યક્તિ ચાહે સ્વભાવ કે સાથ જન્મ લિયા હો, ઉસકે ઉપર પ્રકૃતિ કે ગુણો કા પ્રભાવ હો, ઓર ઉસકે કર્મ કુછ કહેતે હો, લેકિન એસા વ્યક્તિ ભી અગર ભગવાન કે સંગ મેં અર્થાત ભક્તો કે સંગ મેં શાસ્ત્ર કા અનુસાર જીવન જીને કા પ્રયાસ કરતા હૈ, તો ઉસકા પરિણામ બદલ સકતા હૈ. અભી ભી એક હમરે વો આયે થે મહારાજ ઇસ્કોન કે બહોત વિદ્વાન સન્યાસી માને જાતે ભાનુસ્વામી ઇસ હોલીનેસ ભાનુસ્વામી, તો ઉનકે સાથ મેં બેઠા થા થોડી દેર, તો વો બતા રહે થે કુછ બહોત સારી વિષય પે બાત કિયા. એક વિષય થા ઉસમે જિસમે થા કે ચાહે વ્યક્તિ અપને કોઈ ભી કર્મ કા હિસ્ટ્રી લેકર આયા હો, કોઈ ભી ઉસકા કર્મ કા હિસ્ટ્રી હો, લેકિન અગર કૃષ્ણ ભક્તિ મેં અગર વો જુડતા હૈ, तो कर्म का जो हिस्ट्री है या उसकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो सब कुछ फेल हो जाता है, काम नहीं करता उसके ऊपर, या फेल हो सकता है या फिर चेंजेस आ सकते हैं उसके अंदर। आप सोचिए कि जब तक आपको कोई एक्यूरेट बताएगा नहीं तब आप उस पर विश्वास कैसे करोगे, लेकिन जब आपको ये पता पड़ गया कि कृष्ण भक्ति में जुड़ने के बाद आपके कर्मों का हिस्ट्री चेंज हो सकता है और आपके प्लैनेटरी सिस्टम आपके ग्रह नक्षत्र सब बदल सकते हैं, फिर आप कैसे विश्वास कर पाएंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। क्योंकि आप जितना भी जानोगे उनके गारंटी नहीं है कि वो होगा। तो भगवान के शरणागत होने वाले जो भक्त होते हैं उनकी मनोवृत्ति धीरे 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 बदल जाती है, क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सत्वगुण या रजोगुण से सत्वगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अधिक अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, उसे प्रामाणिक गुरु की संगति लेकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वो उच्चतर गुणों को स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो चौथे श्लोक में भगवान ने कहा विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। सो तीन प्रकार की श्रद्धा, सत्वगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। लेकिन सत्वगुण जो है वो आध्यात्मिकता के निकट है, इसलिए मनुष्य को तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण तक ऊपर उठना पड़ता है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद विशेष रूप से बताते हैं कि श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सेकंड पैराग्राफ
इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सत्व गुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सत्वगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सत्वगुणी है, यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती है और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार की होती है।
तो प्रभुपाद ने श्रद्धा के विषय में बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि हमारा हृदय जिस गुण में रहता है उस प्रकार से हमारी श्रद्धा रहती है। हमारा हृदय, प्रभुपाद जो हृदय शब्द का उपयोग किया इसका अर्थ है चेतना। हम किस प्रकार से जिस चेतना में रहते हैं उस प्रकार की श्रद्धा हम उत्पन्न करते हैं। तो धर्म का जो सर्जन यहाँ पर बताया है कि अनेक विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं ना, धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, वो इसलिए होते हैं क्योंकि श्रद्धा कलुषित है, हमारा हृदय जो है वो कलुषित है। जब तक कोई व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण तक, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एक लेक्चर में ये एग्जाम्पल बताया था। वो लेक्चर आई वॉन्ट टू रीड, लेकिन मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते करते पढ़ता हूँ क्योंकि आपका छोटा एक्सरसाइज हम करेंगे इसके ऊपर। तो आई ट्राई टू रीड इन इंग्लिश। अगर लेक्चर है होनोलुलु 1974 भगवद्गीता
17.1.3
या so without coming to the platform sattva gun nobody can advance in spiritual knowledge. Understand? Without coming to the platform of sattva gun nobody can advance in spiritual knowledge. That is a fact. Just as nobody is allowed to enter law college unless he is graduating. ये restriction है. कोई व्यक्ति कानून को कैसे समझेगा? कम से कम उसको उसने graduate तो किया होना चाहिए. So इसी तरह से सबसे पहले मनुष्य को सत्वगुण तक आना पड़ता है. तब आध्यात्मिक ज्ञान प्रारंभ हो सकता है. आध्यात्मिक ज्ञान सत्वगुण से पर है. सत्वगुण सबसे उत्तम गुण माना जाता है, क्योंकि उस समय उसका मस्तिष्क स्वच्छ रहता है और वो वस्तुओं को यथारूप देख सकता है और उसकी समझने में कोई गलतफहमी नहीं होती, बिल्कुल स्पष्ट समझ सकता है वस्तुओं को. इसलिए सत्वगुण जो है वो ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन माना जाता है. कई बार लोग कहते हैं ना, श्रीमद् भागवतम में कहा है कि स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, स्थितम सत्वे प्रसिद्धति. श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो में कहा गया है कि तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयस्य चेत एन एतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति. फिर मनुष्य का मन जो है वो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में स्थिर होता है हमेशा. तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयस्य चेत एते रनाविद्धम. जब कोई व्यक्ति भगवान का शरणागत होता है तो उसका मन धीरे 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 तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से फिर धीरे धीरे स्थितम सत्वे प्रसिद्ध, फिर वो सत्व में स्थिर होता जाता है. भगवद गीता में सेकंड चैप्टर में भगवान ने कहा था कि नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान. भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्य विषय आवेदन निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्व हो नित्य सत्वस्थ हो निर्योग क्षेम आत्मवान. भगवान कहते हैं कि तुम ये तीन गुणों से मुक्त होकर के नित्य सत्व में स्थिर हो जाओ, साधन सत्व में या शुद्ध सत्व में. धीरे 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 सत्वगुण बहुत करीब है आध्यात्मिक जीवन से, इसलिए उसको बताया जा रहा है बार बार. सत्वगुणी व्यक्ति के लिए भक्त बनना बड़ा आसान होता है. तो एग्जाम्पल बताया गया है यहाँ पर प्रभुपाद के द्वारा कि अग्नि, धुआं और लकड़ी. सब जानते हैं कि अगर लकड़ी से अग्नि आता है या आ सकता है. जब आप लकड़ी जलाते हो तो सबसे पहले क्या आता है? धुआं आता है. कभी आपने लकड़ी जलाया है? वो मैच बॉक्स से नहीं, दो लकड़ी घिस करके कभी जलाया है? नहीं जलाया. आपने देखा है किसी को जलाते हुए दो लकड़ी घिस करके? अच्छा, टीवी में देखा है. असली में देखा है? दो लकड़ी को घिस करके जला, ऐसा असली में नहीं देखा.
पहले प्रभुजी यज्ञ करते थे तब भी दो लकड़ी घिस के यज्ञ की अग्नि निकालते थे.
हाँ, लेकिन किसी मैंने एक बार देखा है.
मंथन कास्ट होता था बीच में, अग्नि से रगड़ते थे, ताकतवर लोग ही लगते थे फिर उसी में से धुएं के साथ से
तो
घी डालते थे उसके साथ.
घी डालते तो लकड़ी में से सबसे पहले अग्नि आने से पहले सबसे पहले आता है क्या? धुआं. और फिर उसके बाद फिर अग्नि ज्योत प्रकट होती है. पहले तो धुआं होता है, छोटे स्पार्क्स होते हैं, या फिर अगर आप मैच बॉक्स से भी करते हो तो अभी भी पहले धुआं आता है, फिर धीरे 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 ज्योत आती है. सो एक्चुअली तो सब एक जैसे ही है, धुआं हो, लकड़ी हो, अग्नि हो, लेकिन नहीं. जब आपको अग्नि की आवश्यकता होती है, लकड़ी किसी काम में नहीं आ सकती आपको. अगर आपको भोजन पकाना है तो लकड़ी काम में नहीं आएगी. लकड़ी में से निकला हुआ धुआं भी भोजन के लिए काम में नहीं आएगा. आपको अग्नि ही चाहिए, तभी वो कुछ काम में आ सकती है. फिर आप उस पर कुछ उसकी उष्मा ले सकते हो. अभी आजकल तो अभी विंटर का मौसम है तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग लकड़ी जला के बैठते बाहर, है ना. सो आप प्रकाश ले सकते हो, उष्मा ले सकते हो उसका गर्मी. सो अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास लकड़ी है तो अब सब कुछ आ गया मेरे पास, तो ये दिस इज रास्कलडम, ये है धूर्तता. सो आपको अग्नि को प्रकट करना पड़ेगा, ये सत्वगुण है. Therefore, in our society, we first of all try to reform the fallen souls and most infected materially person. Come to the stage of flame, because without a flame you cannot work. It is not possible. Just like yajna. Yajna ke samay par aap yajna karte hai, to aapko agni ki avashyakta hoti hai. Dhuye se yajna nahi ho sakta. Yadyapi sab yajna jaisa hi hai, phir bhi aap santush nahi hai. Ab, now there is a smoke, it is all right, there is a fire. Ab prakash ho sakta hai, ab agni aa sakti hai. So the point Prabhupada is establishing is that when the smoke is coming from the forest, agar van mein se dhuaan aata hai, to log samajh sakte hai kya? Wahan par aag lagi hai, tab dhuaan aaya hai. Yadyapi ye sab ek jaisa hai, saans ek dusre se jude hue hai, lekin agni ki avashyakta hai. Even though it is not fire, धुआं अग्नि नहीं है, फिर लेकिन अग्नि का इंडिकेशन है. इसलिए तथा कथित ध्यान, आध्यात्मिकता, काल्पनिक विचार, ये सब आध्यात्मिक जीवन से थोड़े करीब हो सकते हैं दिखने में कि आध्यात्मिक जीवन के करीब है, लेकिन वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है. चाहे आपको लगता है कि ये नहीं, ये भी स्पिरिचुअलिटी है, ये भी स्पिरिचुअलिटी, नहीं, स्पिरिचुअलिटी इस तरह से नहीं होती. वन मस्ट अंडरस्टैंड, ये आध्यात्मिकता नहीं, इसको आभास कहते हैं. आभास, जिस तरह से पूर्ण सूर्य प्रकाश एक होता है और दूसरा होता है कि जल्दी अर्ली मॉर्निंग, सुबह के सूर्योदय के पहले आप सूर्य को देख नहीं सकते, लेकिन सूर्य का प्रकाश देख सकते हो. सूर्य उदय नहीं हुआ, सूर्य को देख नहीं पा रहे, लेकिन प्रकाश सब जगह है, अंधकार नहीं है. तो इसी तरह से अर्जुन का ये प्रश्न बड़ा अच्छा है कि जो शास्त्र विधि को फॉलो नहीं करता, शास्त्र के मार्गदर्शन को फॉलो नहीं करता, किंतु उसके पास थोड़ा श्रद्धा है या कुछ विचार है उसके पास, तो उसको क्या मानना चाहिए? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण. सो प्रभुपाद इज रिपीटिंग द पॉइंट, इफ यू सिंपली रिमेन सेटिस्फाइड विद द बूढ़, अगर आप केवल तमोगुण के बराबर माना है, मान एज गुड एज वुड, तो अगर आप तमोगुण से संतुष्ट हो गए हो, जो डेवलप नहीं है, जिसमें अग्नि नहीं है, जिसमें धुआं भी नहीं है, तो आप निम्न कोटि के व्यक्ति मान या निम्न कोटि के श्रद्धा मानी जाती है आपकी. फिर स्मोक वो एक दूसरा मंच है, और उसके बाद आता है ज्योत, प्रकाश, वो सत्वगुण है. सो इफ वन इज कल्टिवेटिंग हिज लाइफ लाइक अ हॉक्स, कैट्स एंड डॉग्स एंड हिज बिहेवियर इज ऑल्सो लाइक दैट, ही रिमेन्स इन दैट पोजिशन. वो अपने जीवन को कुत्ते बिल्ली जैसा बनाते हैं, तो उसका विचार भी उसके अंदर रहता है. और जो एडवांस्ड है, जो भगवान की पूजा करता है, 3 बार स्नान करता है, मंत्र का जप करता है, तो ये अलग होता है. एक सत्वगुण में स्थित है और एक तमोगुण में स्थित है. ऐसा नहीं है कि वो लोग तमोगुण में, उनमें श्रद्धा नहीं है, उनमें भी श्रद्धा है, लेकिन उनकी श्रद्धा बहुत ही निम्न कोटि की है. उनको आध्यात्मिक साक्षात्कार कराने में वो श्रद्धा उनकी सहायता नहीं करेगी. स्वभावज का अर्थ होता है प्राकृतिक या स्वाभाविक. उसका शरीर अभी शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए वो तमोगुण के स्तर पर है. इसलिए हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को. जिस प्रकार से डॉक्टर के द्वारा बताए गए दवाई और परहेज का पालन करके कोई भी मरीज, कोई भी बीमार व्यक्ति धीरे 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 ठीक हो सकता है, उसी तरह से उसको बदलना पड़ेगा. इसका अर्थ, इट इज नॉट दैट वी हैव नाउ बिकम फ्री, अब हम मुक्त हो गए हैं तो हम कुछ भी बकवास कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का आचरण कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं. नहीं, You have to judge by the symptom who is in sattva gun, raja gun or tama gun. किसी भी साधु तभी तय किया जाता है कि उसका आचरण कैसा है, उसके आधार पर साधु की तय किया जाता है. सो द पॉइंट इज, यहां पर प्रभुपाद तीनों श्रद्धाओं के विषय में और रजोगुण और तमोगुण में से सबसे उत्तम किस प्रकार का है, कौन सा श्रद्धा है, उसके विषय में भगवान ने प्रभुपाद जी ने बताया. So now we can have a small exercise. From this lecture, अभी हमने जो lecture प्रभुपाद का जो सुना वो मैंने ट्राई किया हिंदी में जितना हो सके उतना. यस,
तो मतलब फायर इज गुडनेस, स्मोक इज पैशन एंड वुड इज इग्नोरेंस, लाइक दिस
इफ यू कंपेयर. यस, फायर इज गुडनेस, स्मोक इज रजोगुण एंड वुड इज इग्नोरेंस. ओके, सो नाउ तीन प्रकार की जो श्रद्धाएं है उसके आधार पर जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन कि ये एग्जांपल जो प्रभुपाद ने यूज किया है उसके माध्यम से आप क्या समझे है, वो अपने शब्द में भले संक्षिप्त में बताए. जो प्रभुपाद ने का लेक्चर हमने पढ़ा उसके आधार से हम क्या समझे है वो चीज हमें जस्ट इन एक दो वाक्य में क्या क्या हम समझे हैं इसके माध्यम से. अभी पांच और छह श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़िए.
जो लोग दंभ और तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं और जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं.
ये श्लोक 100% मैच करता है 16वें अध्याय का आसुरी लोगों का लक्षण. ये बीच वाले लोग नहीं है. जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था वो अलग प्रकार के लोग हैं, और यहाँ पर पांच और छह में भगवान जो बता रहे हैं वो असुर लोग हैं. वो एक्चुअली वो लोग नहीं है कि जो श्रद्धा रख रहे हैं. इसके विषय में बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो वेद बाह्य लोग हैं, वेद बाह्य का अर्थ होता है कि जो वेदों को पालन नहीं करते, वो लोग अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाएंगे. जो लोग वेदों को रिजेक्ट कर देते हैं उन लोग का दुर्भाग्य हो जाएगा. और यहाँ जो श्लोक बताया बिल्कुल समान है उसके. अभी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो तपस्या करते हैं जिसपे वेद का वो तिरस्कार करते हैं, लेकिन अपने ही कुछ काल्पनिक साहित्य होते हैं और उसके आधार पर बहुत समस्या, बहुत ही हॉरिबल, बहुत ही कष्टदायक, खुद भी कष्ट उठाते दूसरों को भी कष्ट देते हैं. इस प्रकार की तपस्या करने वाले लोग भी होते हैं. वो लोग जनरली इंद्र तृप्ति को आधार बना करके जीवन जीते हैं और वो बहुत ही हठिले होते हैं और सोचते हैं कि हम अपने बलबूते से ही सब कुछ कर पाते. ये कौन है? आसुरी. जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग आतंकवाद का हथियार उठाते हैं, जिसमें धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं और अपने अपने खुद के साहित्य बना देते हैं या फिर अपने खुद के इंटरप्रिटेशन अर्थ उसका बनाते और उसके आधार से फिर खुद भी तपस्या करते हैं जिसमें वो अपना घर बार सब कुछ त्याग देते हैं, फॉर एग्जांपल आतंकवादी है तो, और दूसरों को भी मार डालते हैं। एक एग्जांपल, और कोई ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हो इसी प्रकार के?
मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसा अपने उपनिषद है तो वेदव्यास जी ने लिखे, तो एक ऐसा भी उपनिषद है जो आपको शायद सुना हो, अल्लाह उपनिषद। हाँ? हाँ?
क्या
अल्लाह उपनिषद नाम का कुछ है ऐसा?
नहीं, आज तक तो मैंने
राइट ना बस कितने? आपने जो बताया ना अभी, हाँ, जो अपना निकाल देते हैं, हाँ, काल्पनिक,
हाँ, तो इसलिए सब लोग अपना अपना बनाते हैं नकली। ऐसा कुछ बताना चाहते हो कोई दूसरे?
दूसरा तो ये है कि मतलब वो जबरदस्ती सो कॉल्ड धर्म परिवर्तन करवाते हैं,
हाँ,
जो जबरदस्ती
धर्म। और एग्जांपल है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं थे कि उन लोग का सूत्र है
जैसे ब्रह्मा कुमारी वाला है, वो अपना कुछ सब निकाल लिया है।
yes. फिर मैं संडे को रविवार जो गुजरी है वहाँ गया था ना, तो वहाँ एक फकीर मुसलमान प्रचारक बैठा था और वही ऐसे अपने भगवत अपीदो के अपने श्लोक बोलता था और बाद में निराकार का बात करता था, क्योंकि अल्लाह है वो तो निराकार है, तो वो ऐसा बता रहा और बाद में वो ऐसा बता रहा था अपने उज्ज्वल प्रभु है ना, उनका नंबर उनके पास था और ऐसे बता रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बता रहा कि ऐसे भी बता रहे कि उपनिषद में अल्लाह का अल्लाह उपनिषद नाम का भी एक है उपनिषद जिसमें अल्लाह का डिस्क्रिप्शन दिया गया ऐसा ऐसे।
दूसरे कुछ इस प्रकार और कोई उदाहरण? एक्चुअली उदाहरण तो मैं दे सकता हूँ बहुत सारे, लेकिन आप बताइए कुछ जो इस प्रकार से सोचते हैं लेकिन उनकी श्रद्धा जो होती है शास्त्र से विपरीत होती है। हाँ, वो भी है शास्त्र से विपरीत है। फिर एक ऐसा भी है कि ये लोग इंद्रिय भोग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना चाहते है, लेकिन इंद्रिय भोग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये भी असुरी जीवन है और इसमें जुड़ने वाले जो भी अनुयायी है उन सबके जीवन को बर्बाद किया जाता है, उन सबके चरित्र को बर्बाद किया जाता है, तो खुद भी उत्पात मचाते हैं दूसरे को भी उत्पात मचाते हैं। कई बार वो लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तपस्या करते हैं, बाल अपने नोश के उखाड़ देते हैं।
और कुछ कुछ शास्त्र में कुछ वर्णित विधियां हैं, उन विधियों का इनको बोलते हैं वेजन पार्शियल ट्रुथ, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा ले लिया। इस शास्त्रों में कहा गया कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं, उन 10 धर्मों का लक्षण ही आपको भक्ति की तरफ ले जा सकता है। अब उसमें क्या है, एक लक्षण ले लिया उनने, एक भी लेके और उसी के ऊपर बाकी 100 अपने लगा दिए साथ, और जब कभी बात हुई तो हमारा भी एक है, लेकिन उस एक के साथ बाकी जो अनेक लगा दिए उसको दिखाते नहीं है। तो जितने आजकल के धर्म है अगर इनकी पूरी पुरानी ऐतिहासिकता देखी जाए तो सारे उपनिषदों के एक एक मंत्र के ऊपर इन्होंने शुरुआत करी। जैसे ईश्वर एक है, इसकी शुरुआत वैदिक साहित्य में ही है, उसको अब अल्लाह एक हो गया, गॉड एक है, ये सब किया मान लिया, लेकिन उसके आगे तो कुछ मालूम नहीं था।
Yeah.
उसके आगे उन्होंने अपनी अपनी कल्पना के अनुसार किसी ने जन्नत बनाई, किसी ने दोजक बनाया, किसी ने कुछ बनाया और स्टार्ट कर दिया, और उसको एक सोशल एंड पॉलिटिकल समझा जाए या राजनीतिक उन दिनों राजाओं के उसके साथ जोड़ दिया, और फाइनली दे टर्न इनटू सिस्मोदर परायण।
यस,
आया बस दो ही चीजों के लिए वो लग गए।
तो इस प्रकार के बहुत सारे चेंजेस। यस,
दादा भगवान है मेरा छोटा भाई, तो वहाँ क्या करते है कि शिव जी है, योगेश्वर है, फिर साईं बाबा है, ऐसे सबको दिखाते हैं, सबको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन बाद में वो ले जाते हैं सीधा सिमंदर स्वामी मतलब निराकार की और ये ले जाते हैं, और एक्चुअली वो जैन धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो सिमंदर स्वामी की ओर ले जाते हैं और बोलते है कि भाई कृष्ण जो है वो योगेश्वर के रूप में वो आने वाले हैं ऐसे ऐसे
यस तो इस तरह से अलग अलग लोग अपनी अपनी आश्चर्य बुद्धि के अनुसार श्रद्धा करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं यहाँ पर जो बताया है वो तो बिल्कुल आसुरी ही है जैसे और आसुरी लेकिन श्रद्धा अलग अलग हो सकती है
मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो लोग दो दो एग्जांपल देना चाहूंगा कुछ धर्म धर्म बोलते हैं पता नहीं क्या बोल सकते हैं जिसमें ऐसा होता है कि डू गुड बी गुड कि आप जो भी करो मतलब अच्छा करो और आपको कुछ ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है आप जो कर रहे हो मतलब दिन में एक बार या हफ्ते में दो तीन बार ये करो बाकी अपना जो भी करते हो करते रहो तो लोगों को बहुत कंफर्ट जोन में ही रखते हैं तो लोगों को वो अप्रिशिएट करते हैं दूसरे कोई मतलब प्रकार के उसमें ऐसा होता है कि वो फिक्स होता है कि भाई एक पर्टिकुलर दिन ये देवी देवताओं की पूजा करूंगा और मुझे ऐसा फील होगा कि मैं आध्यात्मिकता कुछ कर रहा हूं और बाकी मैं सब नॉनसेंस भी कर सकता हूं तो ये भी एक है
यस लेकिन दूसरा वाला जो आप बताया वो शायद अर्जुन के प्रश्न में आ जाता है लेकिन वो उसमें थोड़ा बहुत श्रद्धा है लेकिन पांच और छह श्लोक में प्रैक्टिकली असुरी प्रकृति के जो 100% वेदों को रिजेक्ट करते हैं वो लोग क्या है कि वेदों को सो कॉल्ड फॉलो करते हैं कुछ लोग सो कॉल्ड या तथाकथित रूप से फॉलो करने वाले तो ये लोग जैसे होते हैं वो अपने शरीर को भी बहुत कष्ट देते हैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु वो किस प्रकार का था बहुत कष्ट दिया था अपने शरीर को उसने लेकिन उसका जो तपस्या था वो आसुरी था उसका उद्देश्य जो था वो आसुरी था उसने अपने शरीर में ऐसी तपस्या की थी कि संसार में कोई कर नहीं हो सकता ऐसी तपस्या तो उसके पूरे शरीर में क्या बोलते वो चींटी के घर नमक और जो छोटे छोटे वो
हड्डी पे ही वो था
चींटियां रहती है उसके अंदर रहती है छोटे छोटे वो घर बन जाते हैं तो पूरा शरीर के अंदर पूरा उसके अंदर वो पर्वत बन गया था पूरा शरीर उसका जब तपस्या करते करते जब ब्रह्मा जी आए तो कहाँ हिरण्यकशिपु बोले ये पर्वत जो है वो हिरण्यकशिपु है पर्वत बन गया था देखने से ऐसा लगता है कोई पहाड़ है लेकिन उसके अंदर हिरण्यकशिपु था उसके ऊपर पूरा पर्वत बन गया था वो कोई गुफा नहीं थी उसके अंदर लेकिन उसका पूरा शरीर ही उस तरह से उसमें शरीर में से ही कहीं से कुछ निकला है कहीं से कुछ निकला है कहीं कुछ ऐसे इस प्रकार का उसका तपस्या इतना भयानक तपस्या लेकिन ये तपस्या करने से भगवान कहते हैं कि पहले विद्याभूषण कहते हैं भगवान के शब्दों में कि दे अब्यूज द फिजिकल एलिमेंट्स दैट कंपोज देयर बॉडीज दे इमेसिएट देयर बॉडीज बाय अननेसेसरी फास्टिंग्स उपवास करते हैं बहुत सारे ऐसे उपवास अननेसेसरी फास्टिंग कुछ ना कुछ उपवास होते रहते बाय द निग्लेक्ट दे ऑल्सो टॉर्मेंट मी मुझे भी कष्ट देते भगवान कहते हैं मुझे भी ये लोग कष्ट देते हैं क्योंकि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूं तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो वैदिक जो सिद्धांत उससे बाहर है इनको असुर जानो और उनका दुर्भाग्य को उससे बच नहीं पाएंगे तो इसका क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए कि जो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं अलग प्रकार के हैं जो यक्ष और राक्षस की पूजा करते हैं वो लोग शायद वैदिक सत्ता के रूप में कृपा प्राप्त कर सकते हैं शायद धीरे धीरे मानना शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे शास्त्र में श्रद्धा होने के कारण हो सकता है कि वो उनकी आसुरी भावना नष्ट हो जाए एक संभवतः स्थान है ये राक्षस और यक्षों का रजोगुण में आता है राइट उसमें आता है लेकिन जो लोग देवताओं की पूजा करने वाले हैं वो तो किसी संत की संगति करने से वो लोग बदल सकते हैं अपने आप को और शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा को विकसित कर पाते हैं लेकिन असुर जो है उसका कुछ नहीं हो सकता तो ये अलग अलग प्रकार के जो गुण है उसके आधार से श्रद्धाएं बनती है जैसे इसको आरजीबी कहते हैं कई बार आरजीबी पता आपको रेड ग्रीन एंड ब्लू तो सत्व गुण जो है वो रेड के साथ कंपेयर किया जाता है, सॉरी सत्व है येलो के साथ कंपेयर किया जाता है, रजोगुण में लाल आता है और इग्नोर तमोगुण में ब्लू आता है, येलो रेड एंड ब्लू एग्जाम्पल के रूप में। एक्चुअली तीनों गुण तीन अलग अलग कलर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप इसकी कंपेयर करो तो तीन को तीन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 81 हो जाएगा। तो और इसको मल्टीप्लाई करते ही जाइए तो कितना हो जाएगा, अनलिमिटेड। तो इसी तरह से कई बार कुछ लोग बिल्कुल हमारे जैसे ही होते हैं, हमारे जैसे ही विचार वाले होते हैं, फिर भी हमसे अलग होते हैं। इस तरह से आप संसार में, ये आश्चर्य है कि संसार के अनगिनत जीवात्मा है, अनगिनत। मनुष्य की कितनी आबादी है?
4 लाख करोड़
पूरे विश्व, 700 करोड़ 800 करोड़, ये तो काउंट किए हुए, और जिसको बच गए वो बोनस, और इसके अतिरिक्त और सारी योनियां, ये सब जो है, चलो मनुष्य को गिन लो, 700 करोड़ काउंट करके चले, 700 करोड़ जितने भी है उसमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। आप एकदम 19-20 लेके आ जाएंगे, बिल्कुल बोलने चलने सोचने खाना पीना सब कुछ एक जैसा उसको पसंद है, लेकिन कुछ तो एक परिणाम बदल ही जाएगा। ये है तीन गुणों का मिक्सचर में ये चीज पाई जाती है। तो इसलिए जितने अलग अलग प्रकार के वैरायटीज है, सेड है अलग अलग प्रकार के गुणों के, उस उतनी अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं हो सकती है, उतनी अलग अलग प्रकार की श्रद्धा, आप समझ, तो उतने अलग अलग प्रकार के पंथ बन सकते हैं। अगर 700 करोड़ लोगों का अपना अपना पंथ बना सकते हैं लोग, आप समझ, क्योंकि ये श्रद्धा के आधार से, इसलिए ये जो है वो शास्त्र के आधार से नहीं है। शास्त्र के आधार से जो लोग फॉलो करने वाले हैं वो लोग तो तीन गुणों के अंदर उससे मुक्त हो जाए, सत्वगुण से निकल जाते। तो अधिक कोई ये बनाया इस तरह से कि कोई भी व्यक्ति किसी एक गुण में 100% नहीं रह सकता। हमने 15वें अध्याय में सुना था शायद कि एक व्यक्ति 14वें अध्याय में एक व्यक्ति एक गुण में नहीं रह सकता। मीन्स मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अभी मैं पूर्ण रूप से रजोगुण में हूं, ये नहीं हो सकता, ये मिक्सचर रहता है, हमेशा
चेंज होता रहता है। कभी आपने बताया था कि भी वो प्रधान हो जाता है,
हाँ, कभी कोई प्रोपोर्शनेटली, कभी 1% सत्वगुण होता है, 3% रजोगुण होता है, 96% तमोगुण होता है, ऐसे तो ये मिक्सचर रहता है हमेशा।
लिखा है कि सत्वगुण ही देवताओं को पचता है, तो कृष्ण तो देवता नहीं है, कृष्ण तो भगवान है, तो जो कृष्ण की भक्ति
ऊपर चला जाता है
तो सत्व से ऊपर ही है ना,
विशुद्ध सत्व में चला जाता है। इसलिए यहाँ पर देवताओं का इसलिए तो कहा है कि वो इसी श्लोक में, इसी चैप्टर में आएगा, भगवान 18वें अध्याय में बोलेंगे भगवान कि ये तीन गुणों से पर हो जाता है मेरी सेवा करने वाला। भूत लोग की पूजा करने वाले लोग भी होते हैं, तमोगुणी लोग होते हैं, वो भूतों की पूजा करते हैं। देखा है आप लोगों ने भूतों की पूजा करने वाले?
देखें, बहुत देखे। होता है ना। अब कहीं
शुरू हो जाते
कुछ भी अजीब दिखे, स्पेशल जो कि जिसका एक्सप्लेनेशन ना हो, पूजा शुरू हो जाती
है। बिल्ली रास्ता काट लगी तो बोले आप सुकन हो
गया।
तो ऐसे तमोगुणी पूजा भी भक्तिवान ठाकुर के टाइम पे भी वो जो विषय किशन जो थे वो सब तमोगुणी पूजा करने वाले लोग थे, वो तांत्रिक थे, तांत्रिक, और कुछ मंत्रोच्चार करेंगे कुछ, तो भक्तिवान ठाकुर जैसे महान आचार्य जो है उनके शरीर में भी उन्होंने उसका प्रभाव डाला था। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी ऐसा सब होता है, तो मैं कहता हूँ हमेशा कि ये सब होता तो है, लेकिन आजकल इसके जानने वाले कम है, लेकिन तांत्रिक फिर भी तांत्रिक होता है। अगर किसी को थोड़ा 1% भी ब्लैक मैजिक आता है तो भूत प्रेत की पूजा करते हैं। आजकल होता है ऐसे, उज्जैन में होता है, फिर कई जगह होता है ऐसी, श्मशान में पूजा करते। तो ये लोग एक्चुअली भूत की पूजा करते हैं। तो जो भूत की पूजा करने वाले कहाँ जाते हैं? भूत लोग में जाते हैं, भूत प्रेत में जाते हैं, है ना, उसकी गति उसी तरह से। तो इस तरह से तीन प्रकार के जो लोग होते हैं वो तीन अपने अपने श्रद्धाओं के आधार से तीन प्रकार की उपासनाएं करते हैं अलग अलग प्रकार के। यस,
एक सेक्ट ऐसा भी है जो बंगाल में खास करके जहाँ पे वो लोग नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहार भी करते हैं, तो वो भी शास्त्र से विरुद्ध है।
यस, असुरी है, क्योंकि वो अपनी इच्छा के आधार से करते हैं, असुरी है। शास्त्र का त्याग करते, शास्त्र का उपहास करते, शास्त्र का अवहेलना करते। ऐसे तो बहुत सारी चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में कि मछली जो है गंगा का फल है, गंगा का प्रसाद है, गंगा को भोग लगा हुआ, उनको गंगा जी का कृपा है मछली, इसलिए मछली खाने से शुद्ध हो जाते हैं, मछली खाने से गंगा की कृपा प्राप्त होती है। तो ये असुरी विचार है, असुरी विचार
है। उड़ीसा और बंगाल में जो ब्राह्मण परिवार है वो भी मछली खाते हैं।
हाँ,
उड़ीसा और उधर के हैं,
yes.
खाते हैं वो, तो मछली को शाकाहार मानते।
हाँ वैसे वो, लेकिन वो फिर भी वो उनकी तमोगुणी अज्ञानता है, ये अज्ञानता के कारण, क्योंकि ये बात सच है। जब प्रभुपाद भी गए थे एक बार, जब वो बालक युवावस्था में थे, तो जगन्नाथपुरी गए थे, गौर मोहन जी के एक मित्र के घर पे, उनका उनके पिताजी के मित्र थे, उनके घर पे गए थे। तो दुर्भाग्य से वो भी ब्राह्मण फैमिली के ही थे और जगन्नाथपुरी में, लेकिन वो पुरी में रहते थे, लेकिन उनको प्रभुपाद जी के प्लेट में वो उन्होंने माछ परोसा, मछली परोसी, तो प्रभुपाद को बड़ा दुख हुआ इस बात को कि आप ब्राह्मण होकर के आप मछली खाते हो। तो लेकिन ये अज्ञानता के कारण या माया असुरी विचारधारा के कारण या तमोगुण के कारण इस प्रकार का अज्ञान देखा जाता है लोगों में। यदि भी प्रभुपाद तो फिर वहां से चले गए, उन्हें छुआ भी नहीं और वहां से चले गए, फिर कभी उनके घर पे खाया भी नहीं कभी। सो इस तरह से तीन प्रकार की श्रद्धा, तीन प्रकार के अलग अलग सिद्धांतों को फॉलो कराती है।
प्रभु जी, एक इंसिडेंस हमारे साथ खुद हुआ, मैं एक मिनट में बताता हूँ। 91 की बात है, उज्जैन में काल भैरव मंदिर है।
हाँ, वो है ना।
तो उज्जैन दर्शन करने गया था मैं, मेरे भाई भी मेरा बेटा था, तो वहाँ पे काल भैरव मंदिर में वो शराब का प्रसाद चढ़ता है, वही प्रसाद बांटा जाता है।
शराब शराब
शराब ओके
शराब चढ़ाते हैं, उसी को बांटते हैं सब। तो मैं, मेरी वाइफ और बेटा था साथ में, तो गए तो वो सबको बांट रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या है, कहते प्रसाद है। तो इसमें से पता लगा कि स्प्रिट जैसी सुना तो दारू है। तो हमने तो हाथ जोड़ लिया, हमने कहा हम तो नहीं लेते। नहीं, तुम ये नहीं करोगे तो मेरी वाइफ थोड़ी मिलिटेंट है, उसने बोला हो जाएगा, होने दे, देखूंगा क्या कर लेगा। हम नहीं छूते, नहीं पीते, नहीं पीते हैं बहुत। वो हमने मतलब गुस्से को दिखाने के लिए बहुत क्रोध पूर्वक हम लोगों की तरफ देखने लगा। थोड़ा देर देखता रहा, हम लोगों ने प्रणाम किया, हम चल दिए, 10-5 रुपए चढ़ाने थे चढ़ा दिए और प्रणाम करके चले आए। तो उसने कहे कि वो ऐसे करके डर दिखाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं, डर से, डर में आप अगर फंस गए किसी भी आकांक्षा।
मैं गया था उधर उज्जैन में, लेकिन मैं कभी उस स्थान पे नहीं गया, पूरा उज्जैन घूम लिया, कोने कोना देख लिया।
मैं तो वहां
गया, लेकिन उस मंदिर में मेरे मदर ने भी कहा कि उस मंदिर में जाने से फायदा नहीं है। हालांकि वो तमोगुणी उपासना होती है उधर, शिव जी को जो डेड बॉडी की जो ऐश होती है भस्म, उसकी पूजा, उससे पूजा की जाती है। डेड बॉडी की भस्म से शिव जी की पूजा की जाती है, सॉरी भैरव की पूजा करते हैं।
महाकाल में
ही, महाकाल में करते हैं,
ज्योतिर्लिंग में आते हैं।
तो
मंगला आरती उससे करते
हैं, उससे करते हैं, लेकिन ये एक
काल दूसरा मंदिर है।
वहाँ वहाँ शराब का तो प्रसाद नहीं चढ़ता,
वहाँ नहीं चढ़ता। मैंने अभी सुना भूमापुरा नाम सुना है, यहाँ जसोदा चौकड़ी से आधी जन से आगे जाता नैनपुर चौकड़ी से पहला, वहाँ अंदर करीबन 3 किलोमीटर अंदर है हाईवे से, इतने सारे 3 बजे मंगला में हमें संडे को कोई दिखता नहीं, मतलब इतनी पब्लिक नहीं दिखती है बराबर है, वहाँ 3 बजे लाइन लगती है, हनुमान जी का मंदिर है, 3 बजे लाइन लगती है, और वहाँ साल में एक दिन ऐसा कोई आता है, पूनम का दिन पता नहीं, उस दिन वो लोग मरी हुई मछली को ले जाते हैं, तो हनुमान जी को तो सिंदूर और तेल चढ़ते हैं बराबर, उस तेल में डालते तो वो जिंदा हो जाती है, ऐसा सब लोगों ने देखा है, और ऐसा
वहाँ पर पानी होता है क्या
इतनी,
तो जिंदा मछली को तो फिर से पानी में डालना पड़ेगा
पता नहीं लेकिन ऐसा कि मरी हुई मछली वहाँ सिंदूर, वहाँ सिंदूर करते हो और तेल चढ़ा हुआ होता
yes.
है
ऐसे तो ऐसे बहुत सारे ऐसे है कि जो अलग अलग प्रकार की श्रद्धा होती
है, इतनी सारी पब्लिक आती है, मैं एक्चुअली भगवदगीता वितरण के हिसाब से जाते हैं, बहुत सारा पब्लिक आते हैं, लेकिन कई सारे गाड़ियां आती है और पता नहीं,
तो 3 प्रकार की एक्चुअली ये सत्व गुण रज गुण तम गुण ये श्रद्धा के अनुसार इस प्रकार के अलग अलग बहुत सारे, आज कलयुग में तो बहुत सारे, कलयुग में तो धर्म के नाम पे बहुत कुछ होता है,
कलयुग में तो 2 ही तरह की श्रद्धा है, या तो लोभ से या भय से,
लोभ से या भय,
ज्यादातर तो लोभ से ही
है। आप जो बोल रहे थे हिरण्यकश्यप की ऐसी श्रद्धा, मतलब आपने जैसे बताया एक एग्जाम्पल वो रेलेवेंट है कि बहुत फास्टिंग करते है बहुत, मतलब 15-15 दिन, बाकी उसके अलावा अपने आप को तपस ज्यादा, अपने आप को
कष्ट देने वाले कम है, इंद्रिय भोग करने वाले ज्यादा है,
राइट,
खुद को कष्ट देने वाले लोगों की संख्या तो बहुत ही कम है
आजकल, कम है दूसरों का देने,
जैन में एक एक महीना तक अट्ठाई करते कुछ नहीं खाता
है, ऐसे कुछ है संप्रदाय जिसमें
और
इस प्रकार के घोर तपस्या होती है, अगर आप हिमालय में जाओगे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको ऐसे कि जो बहुत घोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तमोगुण ही होता है, लेकिन वो बहुत कम होने है, कलयुग में बहुत कम है ये सब चीजें।
प्रभु जी ऐसा है, 2 ही हैं, कमजोर की ही बलि चढ़ाई जाती है जो अपने से कमजोर है उसी की बलि चढ़ती है, और लोभ या डर से श्रद्धा प्रकट होती है। बचपन में संस्कृत का श्लोक पढ़ते थे, उसमें था कि सिंहन नहीं वो गजान नहीं वो व्याघ्र नहीं बचे नहीं बचे अजा पुत्रम बलिम दद्या देवो दुर्बल घात का, कहते हैं कि कोई कभी ये नहीं कहता कि मैं शेर की बलि चढ़ाऊंगा, न कोई कहता मैं हाथी की बलि चढ़ाऊंगा, किसकी बलि चढ़ाते हैं, बकरी के बच्चे की अजा पुत्र बकरी के बच्चे की या कोई और कमजोर प्राणी की, तो इससे ये सिद्ध होता है कि देवता भी कमजोर पे ही घात करते हैं, ताकतवर से देवता भी नहीं बचते, तो यही सिद्ध करता है कि ये सब श्रद्धा जो है वो वही लोभ या डर की वजह से ही
है। नहीं, दूसरी एक बात भी है कि कई लोगों का जैसे जो है वहाँ एक बार गए और कई टाइम कई समय से वो अपने कुछ दुख से पीड़ित है और वो काम हो जाता है, उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है और फिर चालू हो जाती है।
यस, तो ये श्रद्धा एक्चुअली उसकी चेतना के ऊपर आधार करता है, उसकी चेतना जिस प्रकार से है उस आधार से उसकी श्रद्धा होती है, और इसमें मुख्य बात यह है कि एक तो आसुरी होते हैं कि जो शास्त्र को बिल्कुल नहीं मानते, एक ऐसे लोग होते हैं कि जो शास्त्र को पूरा मानते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं कि जो शास्त्र को केवल अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसको मानते हैं और वास्तव में वो शास्त्र के सिद्धांत को समझते नहीं है और अपने अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी प्रकार की किसी काल्पनिक श्रद्धा विकसित करते हैं। तो एक्चुअली कुछ लोग ऐसे भी है, जैसे अब देखा होगा पोलैंड में एक जगह है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली जगह का नाम, मैं भूल गया, वो लोग किसी भगवान को मानते हैं उसी जगह पर, वो भगवान पीले कपड़े पहनता है, मोर का मुकुट पहनते हैं और श्याम वर्णी है और फ्लूट बजाते हैं, लेकिन वो कृष्ण नहीं है,
वो शरीरधारी
है, शरीरधारी
है,
हाँ
मतलब वो अभी
मूर्ति है,
मूर्ति है
हाँ, लेकिन वो लोग का उन्होंने कोई और नाम दिया है और पूरा रिस्क्रिप्ट मैं सुना हूँ वहां पर वहां के लोगों से, पूरा कृष्ण पूरा एग्जैक्टली जो कृष्ण का सुंदर है, पीताम्बर मोर पीच फ्लूट एवरीथिंग, दैट इज व्हाई दे डोंट कॉल कृष्ण देन, बोलो कृष्णा, बोलो कृष्ण, उन्हें कृष्ण नहीं, दे डोंट नो व्हाट कृष्ण इज, उनको नहीं पता कृष्ण क्या है, भगवद गीता क्या है उनको नहीं पता, लेकिन वो पूजा करते बोलो कई सालों से पुरखों के, क्या बोलते उनके पेड़ियों से उनके पूजा हो रही है कृष्ण की, लाइक दैट। तो इसलिए अज्ञानता में ये एक्चुअली इस प्रकार के लोग शास्त्र को पूर्ण तरह फॉलो नहीं कर रहे, पूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अभी आगे के 3 श्लोकों में आहार, तो 7वां श्लोक पढ़िए।
यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वायु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है।
देखो ये सत्व गुण में क्या है, भोजन किस प्रकार का होता है, आयु बढ़ाने वाला, जो खाने से आपका आयु बढ़ता है, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला। बल भी मिलता है, स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है, सुख भी प्राप्त होता है, तृप्ति भी। और ऐसा भोजन कैसा होता है, रसमय अर्थात ड्राई नहीं होता है, जूसी होता है, रसमय होता है, स्निग्ध अर्थात थोड़ा सा घी वाला, स्निग्ध
चिकना
जैसा। फिर स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है, जैसे कृष्ण प्रसाद आप खाते हो
हेल्दी फूड जी समझ,
तो उसमें आप कृष्ण प्रसाद जगन्नाथपुरी का अपने प्रसाद खाया, आनंद बाजार का, आनंद बाजार का जो प्रसाद होता है उसमें ना ऑयल होता है, ना मिर्ची होती है, ना टमाटर होता है, ये कुछ नहीं होता उसके अंदर, सब दाल चावल सब्जी सब, लेकिन फिर भी इतना स्निग्ध और इतना स्वादिष्ट प्रसाद होता है, राइस दाल सब्जी बहुत स्वादिष्ट। ऐसा नहीं तीखा आपको खा नहीं पाओगे, या फिर बहुत खट्टा, या फिर बहुत मीठा नमकीन, ऐसा कुछ नहीं, बहुत स्वादिष्ट होता है, पूरे हृदय को स्वच्छ कर देता है। ऐसा सत्वगुणी लोग इस प्रकार का भोजन पसंद करते हैं। फिर रजोगुणी लोग किस प्रकार के होते हैं, कैसा खाते हैं,
खट्टे, नमकीन, गरम, पटपटे, शुक तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक, रोग उत्पन्न करने वाले हैं।
एक सॉरी क्वेश्चन, ये आगे के श्लोक में से इसी की वजह से मैक्सिमम डिवोटीज कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, ऐसे प्रसाद की वजह से ही,
क्योंकि उनके स्वास्थ्य, उनका विचार सब कुछ शुद्ध होता है,
कि उनकी एंट्री से यहीं से होती है।
और साथ साथ में इस प्रकार का भोजन करने वाले जो होते हैं सत्व प्रकार का भोजन, उन लोगों में विकार कम आते हैं, मन के जो चेतना में जो विकार आते हैं ना, गलत विचार आते हैं, किसी का बुरा करने की सोचते हैं, या फिर जब बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग करने का सोचते हैं, या फिर जो शास्त्र से विपरीत कर्म है, जैसे झूठ बोल करके कुछ गोलमाल करना, या फिर धन प्राप्ति के लिए गलत का सहारा लेना, तो ये सारी जो कार्य है, ये सब चीजें वो सत्वगुणी भोजन करने वालों में कम पाई जाती है, सत्वगुणी प्रकार का भोजन करना, क्योंकि ये आहार ही अपने आप में इतना शुद्ध है कि इस प्रकार का विचार उनके मन में आता नहीं है इस प्रकार से। रजोगुण में कैसा है, बहुत तीखा, मैरिज पार्टीज में जाते हो कभी तब देखते हो ये सारे उसके अंदर मेंशन है, बहुत तीखा होता है, बहुत खट्टा होता है, ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत इतना गर्म होता है कि आप उसको खा भी ना पाओ, कुछ लोग होते हैं कि चूल्हे से डायरेक्ट दे सकते हैं आपको, बहुत गर्म, फिर बहुत ज्यादा चटपटा, बहुत ज्यादा मसालेदार, बहुत सारे अब एक बार आप किसी भी होटल वाले को पूछो, होटल में जो रसोई बनाने वाला है किसी को, बोले आप ये खाते हो, बोले नहीं मैं तो अपना टिफिन लेके आता हूँ घर से, बोले अपना उसका पूरा होटल है, सब कुछ है, रोज 1000 आइटम बनती है, लेकिन फिर भी टिफिन लेके आता है। आप उसको पूछोगे ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं खाते, बोले ये रोज के खाने वाले आइटम थोड़ी है, ये रोज नहीं खा सकते, क्योंकि इतना मसाला डालते हैं हम इसके अंदर, इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत सारा मसाला डालते हैं, तो ऐसे मसालेदार बहुत मसाला, और बाद में क्या होता है सूखा भी होता है, वो ड्राई होता है उसमें, कहीं बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो ड्राई होती है और बाद में एसिडिटी क्रिएट करता है ना, ऐसा रात को देखा है आपका, कुछ लोग खाते फिर जलते रहते, एसिडिटी रहती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और फिर बहुत जलन उत्पन्न करने वाला रजोगुणी व्यक्ति को ऐसा भोजन दुख होता है उससे खाने में, फिर खाने के बाद शोक आता है और बाद में आता है यस और बाद में रोग, वो भी बाकी है, वो आना बाकी है। अब ये रोज कोई खाएगा ऐसे तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगा।
देखा जाए तो इसे, मैं फार्मा फील्ड में हूँ इसलिए मुझे पता है कि मतलब पहले के टाइम पे जो डिसीज होते थे 50 साल पहले, वो बाहर मतलब बाहर से जैसे मतलब फीवर मलेरिया वगैरह वो सब होता था, अभी तो लाइफस्टाइल डिसीज ही हो गए,
लाइफस्टाइल डिसीज
तो ये इसी की वजह से हो रहे हैं, भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं।
यहाँ तक कुछ लोग मुझे ऐसे बता रहे थे कि कुछ साल पहले, समझ लो 40-50 साल पहले, अधिकतर लोग घी में पकाते थे, पूरी रसोई सब्जी वगैरह सब कुछ घी में पका रहे थे, और किसी को भी घुटने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, घुटना हमेशा काम करता था, और कोई ऐसा हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं कि सब हार्ट पेशेंट बहुत थे पहले ऐसा सब, और बहुत ज्यादा ओबेस किया सॉरी बहुत वेट बढ़ गया, ऐसे भी नहीं थे। लेकिन जब से घी का स्थान किसी और ने ले लिया तो धीरे 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 आहार जो है वो पूरा बिगड़ता गया, है ना, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं।
मिलावट वाला दो का फैक्टर है, दो है, एक तो घी का स्थान दूसरे ने ले लिया, और दूसरा फैक्टर है कि सब निकम्मे हो गए, बैठ के खाते हैं,
बैठ के खाते हैं, यस
बैठ के खाते हैं, और मतलब अगर मुंह ना चबाना पड़े तो और आनंद है,
यस
ऐसे ही खा रहे हैं, तो उसके चक्कर में क्या है वो यूज तो होता नहीं है,
कसरत में कुछ नहीं करते सब कुछ। और अमेरिका में पूरे विश्व के सबसे अधिक ओबेस नंबर वन, वो अगर 5 मिनट का डिस्टेंस होगा ना फिर भी कार निकालेंगे, 5 मिनट चलना है फिर भी कार निकालेंगे, सबसे ज्यादा ओबेस।
पहले के टाइम के अंदर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, अभी सबसे फैसिलिटी बड़ी है,
रोग
बड़ा है, क्योंकि पहले क्या है कि अगर माताजी लोग काम करती थी तो वॉशिंग मशीन है या नटराज घर घंटी है या फिर पानी भरने के लिए भी दूर जाना पड़ता था, तो ये सब एक्सेस ऑटोमेटिकली होती थी, अभी तो ये सब बंद हो गया है, इसलिए बढ़ गया है वो।
तो इस प्रकार से तमोगुण, तमोगुण का आहार क्या है,
खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, खाने से 3 घंटे पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से तो भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं।
देखो 3 घंटे से पहले पकाया गया, जैसे अमेरिका में सिस्टम थी अभी भी है, अब तो इंडिया में भी होने लगी, वो लोग सैटरडे संडे को पूरा बना देते हैं और फिर फ्रिज में रखते हैं, फिर मंडे टू फ्राइडे वही चलता है, वही फ्रिज में से निकाल के खाते हैं। तो 3 घंटे से पहले पकाया गया वो फिर स्वादहीन, जिसमें स्वाद नहीं, जैसे मांस, मांस में स्वाद नहीं होता है, जो भी स्वाद होता है सब मसाले का होता है, बाकी उसमें कुछ स्वाद नहीं होता है मांस में। फिर सड़ा हुआ, वियोजित या सड़ा हुआ, सड़ा हुआ जैसे शराब, तो शराब जो होता है वो सड़ा हुआ, मांस भी सड़ा हुआ होता है, मांस जो होता है वो कई दिनों पहले कई महीनों पहले वो प्राणी मर गया, वो उसका मरा हुआ कितने दिनों का सड़ता 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 कोल्ड स्टोरेज में जाता है, इधर से उधर जाता, सड़ी हुई चीज उनके पास आती है, सबके पास जो भी आता है वो सड़ा हुआ आता है। और आपको पता है ये मास्क बिल्कुल, इसके जैसे शेर होता है, शेर वो कुछ महीनों में एक ही शिकार करता है, कुछ 6 महीना तक या 4 महीना तक ऐसा कुछ, जिसमें एक शिकार करता है बस, ज्यादा नहीं करता वो, फिर वो जो जिसको शिकार करता है वो मांस उसके पास पड़ा रहता है 6 महीने तक, 4 महीना या 6 महीने ऐसा कुछ पड़ा रहता है, फिर उसको अपने अपने समय पे खाता रहता है सड़ा हुआ। तो इस तरह से सड़ी हुई चीज खाते तमोगुणी लोग, मांस और मदिरा ये दोनों ही सड़ी हुई चीज मानी जाती है। फिर जूठा, इसलिए कई बार हम लोग भक्तों को भी कहते हैं कि आप अपने महाप्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, जूठा खाने वाला जो होता है कुछ लोग होते हैं ऐसे, यू नो आई हैव सीन दैट। शुद्धता का पालन करना पड़ता है। देखो अगर कोई वैष्णव है जो आध्यात्मिक दृष्टि से हमसे आगे बढ़ा हुआ है तो उनका उच्छिष्ट खाने से हमें कृपा प्राप्त होती है ना? और हमारे जो कर्म है हम उनको गिफ्ट में देते हैं कि आप हमारे कर्म को आप ग्रहण करो और आपकी आध्यात्मिक शक्ति है वो हमें दीजिए। तो इसलिए कई बार कहा जाता है कि किसी का उच्छिष्ट लेने से पहले उनको पूछना चाहिए कि क्या मैं आपका उच्छिष्ट ले सकता हूं। कई बार ऐसे कहा जाता है कि पूछना चाहिए। तो लेकिन कई बार हमारे भक्त होते हैं वो सब नियमों का इतने चुस्त पालन नहीं करते है। इसलिए कई बार जैसे आप ऑफिस में भी देखते हैं शेयरिंग करते रिवॉर्डिस, तो एक दूसरे का जूठा खाते हैं, किसी की प्लेट से खा लिया, फिर अपने जूठे हाथ से बर्तन को पकड़ना, ये छोटी छोटी चीज होती है लेकिन कुछ लोग ध्यान नहीं रखते। आई ऑलवेज कई बार शुरू शुरू में तो हमें मुझे बहुत बोलना पड़ता था कई बार भक्तों को भी, जूठे हाथ से ये राइट हैंड से खाते जूठा हाथ है ये, तो इसी हाथ से परोसते भी है, अपने प्लेट में भी रखेंगे दूसरे की प्लेट में भी रखेंगे, फिर इसी जूठे हाथ से दूसरी चीजों को भी छुएंगे। तो ये सारी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जूठा हाथ है तो उसको तो जैसे वो प्लास्टर लगा हुआ है ना, फ्रैक्चर हो गया है, उसी तरह से अलग रखना पड़ता है जूठे हाथ को। जूठे हाथ कहीं छू नहीं सकते कहीं पर भी। और साथ साथ में जो प्लेट से हम खा रहे हैं वो प्लेट जूठा हो गया, अभी उस प्लेट को पकड़ने वाला हाथ तो अपने आप जूठा हो गया। और प्लेट जिसमें से हम खा रहे उसको पकड़ा तो अपने आप जूठा हो गया। जूठी प्लेट से पकड़ करके जूठी चीजों को, अब जो शुद्ध चीज है उसको नहीं छूना चाहिए, यहां तक कि परोसने के बर्तन और जो मूल बर्तन होते हैं जैसे पूरी पतीली वगैरह, उन सब चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर उन सब को हाथ लगाना है तो या तो आप हाथ धोकर के करो, या तो फिर आपका एक हाथ जिसको आपने स्पर्श नहीं किया कहीं पर भी लेफ्ट हैंड से, उस हाथ से खुद, अगर आप अकेले हो तो आप उस हाथ से खरीद ले सकते हो लेफ्ट हैंड से एग्जैक्ट। लेकिन जूठा नहीं खाना चाहिए और नहीं खिलाना भी चाहिए। तो जूठा तमोगुणी वस्तु है। फिर अस्पृश्य वस्तु, अस्पृश्य वस्तु का जिसको स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है, जैसे मांस इत्यादि, इसको अगर आदमी छू लेता है ना तो उसको स्नान करना पड़ता है। ये तामसी होते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा है लेकिन एक दो पॉइंट उसमें से बताते हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है।
પ્રભુ વિશ્વ પ્રભુ બે મિનિટમાં ફોન કરે છે, બે ત્રણ મિનિટમાં હિઝ કોલિંગ યુ બેક પ્રભુ। હું પ્રેમવિલાસ દાસ બોલું છું, એ ફોન કરે છે પ્રભુ, ક્લાસમાં બે મિનિટનો ફોન કરે છે।
ફેર પ્રભુપાદ કહેતે હૈ ચિકને પદાર્થ અર્થાત दूध के रूप में जो उपलब्ध है वो सत्वगुणी आहार माना जाता है। दूध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थ जो पशु चर्बी, जहां से जो पशु चर्बी मिलती है, इससे निर्दोष पशुओं को मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पार्श्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुओं चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने के लिए संस्कृत सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशु चर्बी के लिए कोई अलग से नहीं लेना चाहिए कोई चीज पशु चर्बी। आपको शरीर के जो आवश्यक है वो दूध उससे मिल जाता है, दूध, दही, मक्खन, पनीर इससे प्राप्त हो जाता है। पशु उत्तमान भी है, मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रॉपर एग्जांपल फूड का बता रहे हैं कि इस तरह से हमें लेना चाहिए। एक तो तामसी वासी होता है, फिर रोग उत्पन्न करने वाला होता है, फिर उच्छिष्ट लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं भगवान का अर्पित हो या वैष्णव का अर्पित हो तभी उसको उच्छिष्ट कर खाया जाता है, नहीं तो नहीं खाया जा सकता है। तामसी भोजन स्वादिष्ट लग सकता है लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करता है न ही खाना। इसलिए प्रभुपाद ने लास्ट में बताया क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला श्लोक, तो ऐसा भोजन जो होता है वो सत्वगुण से भी शुद्ध होता है, वो रोग सब चीजों से मुक्त होता है, क्योंकि भले ही वो कितने ही घंटे पूर्व क्यों तैयार ना हुआ हो, क्योंकि ऐसे भोजन दिव्य होते हैं। ऐसा अगर आपको भोजन है तो प्रसाद अगर सुबह का शाम को खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो दिव्य भोजन होता है। फिर भी हो सके तब तक हमें अपने शरीर को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो पुरानी चीज होती है जैसे कल बनाया हुआ है या परसों बनाया हुआ है या 3 दिन पहले बनाया हुआ, ऐसी चीजों को खाने से बचने का प्रयास करना चाहिए। एक मंदिर में मैं गया था, उस मंदिर में प्रसाद हॉल में मैं एंटर गया, जैसे मैं एंटर किया तो मुझे बड़ी बदबू आई, तो मैंने पूछा वहां पर विदेश में, मैंने कहा ये प्रसाद हॉल में ऐसी बदबू क्यों आ रही है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2-3 आइटम ऐसी है कि जो 4-5 दिन पहले बनी है। लेकिन फिर जब मुझे परोसने के लिए आए तो मैंने कहा आप आज कुछ बनाया है, बोले आज केवल पूरी बनाई है गर्म, मैंने ठीक है गर्म पूरी दे दो और कुछ नहीं बनाया और कुछ नहीं, बोले ठीक है पूरी दे दो गर्म और मिल्क दे दो गाय का, पूरी और दूध खा लिया फिर मैंने।
डायबिटीज है या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्रसाद के अंदर भले प्रसाद है फिर भी मीठी चीज तो नहीं खानी चाहिए।
हाँ, इसलिए प्रसाद चाहे कैसा भी, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको नमक नहीं खाना चाहिए, या किसी को हार्ट का समस्या है तो उसके सामने राजभोग के पकौड़े भी आते है, या को कहता है कि ये लोग मायापुर से कचौरी आई है जगन्नाथपुरी के, तो ये फिर भी उसको अपने स्वास्थ्य के आधार पर उसको वही खाना चाहिए जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो, चाहे वो कितना भी प्रसाद हो। नहीं, प्रसाद है, प्रसाद तो लेना ही पड़ता है, प्रसाद तो लेना पड़ता है। एक्चुअली मैं कई बार भक्तों को कहता हूँ कि प्रसाद के सिवा हम लेते नहीं कुछ, तो फिर ऐसा क्या होता है कि नहीं थोड़ा तो लेना पड़ता है प्रसाद, थोड़ा प्रसाद क्या, आप तो पूरा ही प्रसाद ही खाते हो या फिर और कुछ भी खाते हो, तो इसलिए थोड़ा प्रसाद लेना पड़े ऐसा ही सिस्टम ही गलत है।
महाप्रसाद
और थोड़ा महाप्रसाद लेना पड़ता है, रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट कर लेता हूँ, उसको रिस्पेक्ट कर दो प्रसाद को बस। कई बार ऐसा होता है भक्त लोग उसको छू करके अपने सिर पे हाथ लगा देते, हो गया प्रसाद हो गया,
कभी कभी रोजी ट्रेन का पूरा डिब्बा प्रसाद खा के लुट जाता है।
हाँ,
ट्रेन के डिब्बे में प्रसाद बांट देते हैं और फिर सब सो जाते हैं तो फिर सामान उठा के चले जाते
हैं। सो इसलिए वी जनरली डोंट ईट प्रसाद विच इज नॉट फेवरेबल टू अवर हेल्थ। इसलिए अगर आपको डॉक्टर ने शुगर खाना मना किया है तो अगर आपको मंगला की खीर भी प्राप्त होती है तो मना करना चाहिए, नहीं मुझे डॉक्टर मना किया है, तो ये चीजों से सावधान रखना चाहिए। ये प्रसाद को देख करके हमें परेशान नहीं हो जाना चाहिए, प्रसाद तो हमारे लिए हमेशा है। यस,
आपने बताया कि मतलब सीनियर डिवोटी वैष्णव मतलब जो सन्यासी गुरु है उनका भी उच्छिष्ट लेने से पहले पूछना है, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कभी जैसे भी मैं जो मतलब ब्यूरो मीटिंग में आए थे तो मुझे तो किसी वैष्णव ने आके दिया कि महाराज का प्रसाद, तो मैंने तो ले लिया, मुझे पता नहीं था मगर उनको।
हाँ, जनरली गुरुजनों का उच्छिष्ट लेने में कोई हानि नहीं है, जो सन्यासी है जो गुरु है या उस प्रकार उस कैटेगरी के जो होते हैं सन्यासी या गुरु के कैटेगरी के, तो उनका प्रसाद लेने में कोई हानि नहीं है। लेकिन एक नियम ऐसा भी है कि केवल शिष्य जो है उसको ही प्रसाद देना चाहिए, ऐसा भी एक नियम है, और जो गुरु नहीं है या सन्यासी भी नहीं है तो उनको पूछना चाहिए। कई बार कुछ भक्त होता है ऐसे कि अगर उनको शायद कई बार पसंद नहीं भी होता है, लेकिन जैसे हमारे गुरु तुल्य है प्रभुपाद जी के शिष्य है या फिर उस प्रकार के शिष्य भक्त, तो इसलिए उनको पूछना नहीं, नहीं पूछते तो चलता है, कृपा आप ले रहे हो इसलिए जब भी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी भी, मैंने देखा है मेरे केस में, मैंने देखा है कई बार मुझे डांटना पड़ता है किसी को, अब क्यों खाया, क्योंकि कर्म का बोझा उठाने की कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना भक्त में। इसलिए जो भक्त होते हैं उनका जूठा अगर खाना है आपको, उनका उच्छिष्ट है, तो उनसे पहले एक बार परमिशन लेना अच्छा है। अगर वो आध्यात्मिक गुरु की कैटेगरी में या सन्यासी की कैटेगरी में या फिर प्रभुपाद जी के शिष्य की कैटेगरी में है तो ठीक है, तो फिर आप उनकी कृपा ले सकते हो। सो वी स्टॉप हियर।